नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण से पाठ सप्तम स्कंद सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 29। तत्र उपाय सहस्राणां अयं भगवतो दितः जदीश्वरे भगवती जथाय अञ्जसारतिः। तत्रोपाय सहस्राणां अयं भगवतो दितः जदीश्वरे भगवती यथा एञ्जसारतिः। तत्रोपाय सहस्राणां अयं भगवतो दितः जदीश्वरे भगवती जथायरञ्जसारतिः।
तत्रोपाय
सहस्राणां भगवतो
दितः
यदीश्वरे
भगवती
शब्दार्थ। तत्र उस संबंध में उपाय विधियों में सहस्राणाम हजारों हजारों अयम यह भगवतावदितः श्री भगवान द्वारा प्रदत्त या जो ईश्वरे ईश्वर में भगवती भगवान में जथा जिस प्रकार ये जिसके द्वारा अंजसा तेजी से रति ही प्रेम तथा आसक्ति। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। भौतिक जीवन से छूटने के लिए जितनी विधियां संस्तुत है उनमें से वह एक जिसे स्वयं भगवान ने बताया है और स्वीकार भी किया है उसे सभी तरह से पूर्ण समझना चाहिए। वह विधि है कर्तव्य का संपन्न किया जाना जिससे परमेश्वर को प्रीति व प्रेम उत्पन्न होता है। तात्पर्य उन अनेक योग विधियों में से जो मनुष्य को भवकलमश से बंधन से ऊपर उठाती है उस एक विधि को जिसे भगवान ने संस्तुत किया है सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए। भगवद गीता में स्पष्टतः बतलाई गई है, जहाँ भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रजः, सारे धर्म का त्याग करके मेरी शरण ग्रहण करो। यह विधि सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान आश्वस्त करते हैं अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मुक्खयिष्यामि मा शुच, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान आश्वस्त कर रहे हैं कि वे अपने भक्त की रखवाली करेंगे और उसे पाप कर्म के फलों से वे बचा लेंगे। भवबंधन पाप कर्म का ही फल है, क्योंकि भगवान आश्वस्त कर रहे हैं कि वे सकाम कर्म के फल को दूर कर देंगे, अतएव चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसलिए आत्मा के रूप में अपनी स्थिति को समझने तथा भक्ति में लगने की विधि सर्वोत्तम है। संपूर्ण वैदिक कार्यक्रम इसी सिद्धांत पर टिका है और मनुष्य इसे वेदों में बताई गई विधि से समझ सकता है। जस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ति महात्मनः। जो महापुरुष भगवान तथा गुरु दोनों पर अव्यक्त श्रद्धा रखते हैं, उन्हें वैदिक ज्ञान का सारे आशय स्वतः प्रकट हो जाता है। स्वतः सूत्र उपनिषद में ऐसा कहा गया है, मनुष्य को चाहिए कि ईश्वर के प्रतिनिधि स्वरूप शुद्ध भक्त को अपना गुरु मान ले और उसे भगवान के ही समान आदर प्रदान करे। यही सफलता का रहस्य है। जो इस विधि को ग्रहण करता है उसे पूरी विधि ज्ञात हो जाती है। इस श्लोक में ये अंजसारति ही शब्द यह बताते हैं कि गुरु की सेवा करने तथा उसकी शरण ग्रहण करने से मनुष्य को भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति करने से ही वह धीरे धीरे भगवान में आसक्त हो जाता है। भगवान के प्रति इस आसक्ति के कारण वह भगवान को समझ सकता है। दूसरे शब्दों में वह यह समझ सकता है कि भगवान की स्थिति क्या है, हमारी स्थिति क्या है और हमारा संबंध क्या है। भक्ति योग द्वारा यह सब सरलता से समझा जा सकता है। ज्यों ही मनुष्य भक्ति योग पद को प्राप्त होता है, उसके कष्ट का समूल नाश होता है और भवबंधन भी कट जाते हैं। इसकी स्पष्ट व्याख्या अगले श्लोक में की गई है, जो सफलता के रहस्य को बताता है। ओम अज्ञानं तिमिरांधस्य ज्ञानां जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति स्वपदांतिकं। वंदे अहम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितंश्च। नमों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो ये श्रीमद्भागवत महापुराण में सप्तम स्कंद का जो सप्तम अध्याय है, जिसमें भक्त शिरोमणि भक्तराज श्री प्रह्लाद महाराज अपने सहपाठियों को शिक्षा देते हैं। उनके सहपाठी कोई जेंटलमैन थे नहीं, सब असुर बालक थे, क्योंकि उनके वंश तो असुर था। पात्र मंत्री पार्षद वही तो सब होंगे, वो रॉयल स्कूल में असुरों का जो रॉयल स्कूल है उसमें दूसरों का एडमिशन नहीं होता। हाँ, जिन स्कूल के प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर संधान अमरक थे वो तो ओनली चुने हुए प्योर डेमन ब्रीड के सब जाएंगे, उसमें एडमिशन लेंगे। तो लोग थे, लेकिन थे सब 5-5 साल के, अभी एडमिशन हुआ था सबका। अब उन्होंने उनके जो टीचर थे वो पढ़ा रहे थे कूटनीति भेद नीति राजनीति सब पढ़ा रहे थे। प्रहलाद जी की तो उसको कोई पसंद नहीं होता, स्कूल का जो कोर्स था सिलेबस में उसको कोई मतलब नहीं था, मतलब था नहीं क्योंकि वो पहले पढ़ चुके थे। उनके असली गुरु तो नारद जी थे, तो गर्भावस्था में वो अपने कोर्स कंप्लीट किए थे, ट्रेनिंग वगैरह सब ले लिए थे। तो यहाँ स्कूल में उनको मन नहीं लग रहा था, बोली क्या भेद बुद्धि पढ़ाते हैं। बाकी जो उनके क्लासमेट थे वो सारे टीचर से पढ़ाते पढ़ते हैं, और जैसे हम देखते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं 5 साल से लेकर के 12, 14, 15 साल तक, साधारण उनका एक स्वभाव होता है, सहज स्वभाव, क्या बालावस्था क्रीड़ा सकता, खेलने में रुचि रखते हैं, दिन भर खेलते ही रहेंगे, माता लोग पकड़ कर कुछ खिला देंगे फिर खेलने चले जाएंगे, टायर्ड हो जाएंगे सो जाएंगे, उठेंगे खाएंगे फिर खेलेंगे, यही तो उनका प्रोजेक्ट होता है। बालावस्था क्रीड़ा सकता, तरुणावस्था तरुणी रखता, वृद्धावस्था चिंताग्रस्ता, ऐसे आचार्य लोग कहते हैं। ये तीन अवस्था में तीन प्रकार की चिंता रहता है। तो वो बालकपन में खेलने का ऐसे ही सहज स्वभाव रहता है, और जब मौका मिलता है तो खेलते हैं। तो अभी क्लास शुरू हुआ था 10 बजे से कि 9 बजे से, आजकल जैसे जो भी 1 बजे तक पढ़ाई हुआ उसके बाद में रिसेस होता है, होता ना आजकल ना, नहीं होता होगा आजकल, तो खेल छुट्टी बोलते हैं उसको। वो खाना पीना जो थोड़ा बहुत लाए तो खाएंगे, नहीं तो खेलेंगे, जब फिर घंटा डेढ़ घंटा टीचर लोग जाकर आएंगे तब तक खेलेंगे। तो वो रिसेस समय था, खेलने का टाइम था, तो टीचर लोग चले गए, बोले ठीक हम आ रहे हैं 2 घंटे के बाद, सब अपने खा पी कर खेल कूद कर बैठ जाना सब। तो गए, और टीचर तो गृहस्थ थे अपने अपने घर में गए खाने के लिए, लड़के लोग तो सब आए, उनको कहीं जाना तो है नहीं, वो खेलने के लिए आ गए। लेकिन उन सारे लड़कों के बीच में राजकुमार प्रहलाद थे, वो देखने में इतने खूबसूरत थे और इतने अच्छा स्वभाव उनका, इतने अच्छा गुण था, इतने नम्र थे कि सारे स्कूल के स्टूडेंट सारे बच्चे उनके साथ दोस्ती करना चाहते थे, उनके साथ मित्रता करना चाहते थे। कोई उनके साथ खड़े होकर सेल्फी खींचना चाहता था, और देखा कि मैं उनका दोस्त हूँ, क्या समझ रहा है मैं उनका मित्र हूँ, मेरा उनका साथ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, सब उनके साथ दोस्ती करना चाहते थे। क्योंकि एक तो राजकुमार है, राजा का सबसे डियर एंड डियर थे, महाराज चक्रवर्ती राजा हिरण्यकशिपु के दी मोस्ट नियरेस्ट एंड डियरेस्ट सन वो थे, और ऐसे ही आपने आप में इतने रूप और गुण में प्रतिभा में थे कि कोई भी देखकर उनके प्रति आकर्षित होता था, पूरे राज्य सभी लोग और स्टूडेंट उनके क्लासमेट क्यों ना होंगे, सभी तो कंपटीशन में उनके साथ मित्र बनना चाहते थे। तो जब रिसेस हुआ तो सब आए उनके पास, मृदुल कुमार चलिए ना खेलते हैं, चलिए चलिए खेलते हैं, सब आप चलने से हम चलेंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे, आप जहाँ बैठेंगे वहीं बैठेंगे, आप चलिए चलिए, सभी सारे सैकड़ों बच्चे उन्हीं के पास खींचे आए, उनके प्रति बड़े सम्मान भाव से, बड़े पूज्य और भक्ति भाव से उनको प्रार्थना कर ले, हम आपका साथ रहना चाहते हैं, आपका फ्रेंड बनना चाहते हैं, चलिए ना खेलते हैं, हम ये करेंगे, सब उनके साथ रहना चाहते थे। तो ये मौका उठाए प्रहलाद जी ने, तो बड़े चतुर थे, बोले देखो ये सैकड़ों बालक है, सब आम उम्र के हैं, मेरे क्लासमेट है सारे सहपाठी, लेकिन उनका मेरे प्रति कितने सद्भावना है, कितने पूज्य भाव है, सब दौड़ के मेरे पास आ जाते हैं और मैं जो बताऊं वही करने के लिए तैयार हैं, मैं खेलूं तो खेलेंगे, मैं नहीं खेलूंगा तो खेलेंगे नहीं, सब मेरे प्रति इतने आदर भाव रखते हैं, तो अभी मैं जो बताऊं सो करेंगे, तो मैं क्या करूं, ये जो इस मूड का प्रॉपर यूज होना चाहिए, सही उपयोग क्या है ना, उनको सद्बुद्धि सिखाऊं, नहीं तो क्या है खेलकूद कर ऐसे जाएंगे। तो प्रहलाद महाराज टुक दैट अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी को लेकर तुमको बोले बोले अरे बालकों आप लोग मूर्ख खेलने जा रहे हैं, क्या खेलेंगे नहीं, अरे खेलना है तो हमारा काम है, टीचर बोल कर गए टाइम तो है खेलने का और हम ये खेलेंगे वो करेंगे, चलिए ना। अरे मूर्ख कहीं के खेल कर टाइम बर्बाद करेंगे, हैं खेलना नहीं है ना, नहीं खेल कूद करना तो क्या करें ना, बैठे हुए बताता हूँ। सारे बोले क्या बात करेगा ना, बचपन में खेलेंगे नहीं, ये क्या हो क्या क्या करेंगे फिर इस समय में। सब बैठ गए बड़े इनक्विजिटिव, बड़े आश्चर्य, क्या बताएंगे कुमार, वही तो स्वयं खेलना चाहिए, हम उनके साथ खेलें, यही तो एक काम हमारा है। लेकिन वो उनको बोले नहीं बैठो, सब सबको बैठा दिए, सब एक बार आकर सीधे देखना चाहते क्या बताएंगे, खेल के अलावा और क्या हमारा काम है। तो प्रहलाद महाराज शुरू किए बोलना उनको, कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभंग मानुषम जन्मंग तदपि अध्रुवम अर्थदम। बोले हे कुमार, कुमार अवस्था कहते हैं 5 साल की उम्र को, इसे बोलते कुमार अवस्था। बोले जो कुमार अवस्था से जो कार्य करना चाहिए ये कार्य के बारे में पता है करते हैं। बोले क्या, खेलना तो ही कार्य है, ये अवस्था तो खेलने के लायक है। बोले नहीं, ये सब मूर्खता। बोले क्या करें ना, कुमार अवस्था से ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए, क्या ना, भागवत धर्म को याजन करना चाहिए। उन्होंने कुछ नहीं पता था भगवान क्या होता है, भागवत वो तो जानते हैं, भगवान एक हिरण्यकशिपु ही सुप्रीम लॉर्ड है, सारे मंदिर में उन्हीं का एडिटी रखा गया था, सारे जो किताब पुराण में सब एडिट करके उनका नाम फिट किया गया था। आप लोग थोड़ा और आगे आगे आ जाइए, तो वो तो और किसी को जानते नहीं थे, लेकिन आज कुमार उनको समझाते हैं कि इसी उम्र में इस 5 साल की अवस्था से भागवत धर्म को पालन करना चाहिए। उनको पता नहीं भागवत धर्म क्या, तो बोले कौन सा है ना, हरे कृष्ण भजन करना चाहिए, नाम जप आदि करना चाहिए। वो तो आज भी, और तभी सत्ययुग के बाद क्या, आज भी कलयुग में भी इतने परेशानी में भी लोगों को किसी को बोलते हैं, अरे ये कोई उम्र है, अभी तिलक चित्ता माला पकड़ लिया, ये कोई उम्र है, दादाजी पापा ये सब कहेंगे, चाचा जी कहेंगे, और कब ना, अरे जब दांत निकल जाए, कान ने सुन ना पाए, आँख में देख ना पावे, पैर में चल ना पावे, तभी फिटनेस होता है, ये काम है क्या, इस उम्र इसको करते हैं। दादाजी आपको तो इसे हो गया ना, हुआ आप करते हैं क्या, आपको तो इसी उम्र हो, सारे जो बोले अपने डेफिनेशन आपका सब है, नहीं फिर भी नहीं कर, तो फिर मुझे क्यों बोल रहे हैं, ये करूँ करके जिसका है वो भी तो नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही सब हमारा भ्रांत धारणा है समाज में आज भी, लेकिन भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज जो समस्त वेद वेदांत के ज्ञाता है, उन्होंने ये उपदेश देते हैं सबसे पहले कि इस अवस्था से 5 साल की उम्र से भजन शुरू करना चाहिए। सीधा सीधा भागवत सिद्धांत है, कुमार अवस्था से 5 साल की उम्र से भजन करना चाहिए। हाँ। बोलेंगे खेलेंगे कूदेंगे, पूरा खेलने के लिए आए क्या, पता है जीवन के उद्देश्य क्या है, पता नहीं सचमुच। हम इतने पढ़ा लिखा करते हैं, कितने इंटरव्यू देते हैं, नौकरी वाकरी करते हैं, कई प्रश्न उत्तर हम करते रहते हैं जीवन भर में। अगर कोई हम लोग को पूछ दे, बोले भैया एक मेरा प्रश्न है, तो बताएंगे ना, बताओ ना, आप जी क्यों रहे हैं, वाई आर यू लिविंग, हम लोग के पास कोई उत्तर है, मैं क्यों जी रहे हैं। एक ही उत्तर कहेंगे, अरे हुड़बक क्यों जी रहे हैं, सारी दुनिया जी रहे हैं, हम जी रहे हैं, ये क्यों पूछने की बात है, हैं सब जी रहे हैं, हम जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं। अरे बुरा ना मानिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ कब तक जिएंगे, है कब तक जिएंगे, फिर ये प्रश्न, अरे जब तक नहीं मरूंगा तब तक जीऊंगा, और क्या है, और क्या उत्तर है, ये तो होगा और क्या है। अगर आप लोग कभी ट्रेन में सफर करते होंगे, आपके बाजू में किसका बर्थ होगा, अब देखे कि अच्छा खासा लड़का बैठा है, हम बोर हो अकेला, थोड़ा बातचीत करते हैं उनके साथ, बोले भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं, ऐसे मुंह किया, अब मैं पूछ रहा हूँ कहाँ जाएंगे, पता नहीं ट्रेन जा रहा है, हम जा रहे हैं, आपको थोड़ा लगेगा चिंता ही, इसे क्या कह रहा है कि भाई साहब मैं पूछ रहा हूँ कहाँ उतरेंगे, हाँ जब ट्रेन रुकेगा मैं उतर जाऊँगा बस, और आगे प्रश्न आप करेंगे नहीं, बोलेंगे ये तो मेंटल है वो तो उनको जाना चाहिए मेंटल हॉस्पिटल भी, ये किसी का आ गया, मैं अच्छा कैसा लड़का समझ रहा था तो कोरा पागल है, तो दो ही प्रश्न से आप डिसाइड कर लेंगे ना नहीं, और उससे बातचीत तो करेंगे नहीं, अरे पागल है तो। ठीक वही प्रश्न हमको कोई पूछे, वही तो बात है, मैं क्यों जी रहे, अरे कोई उत्तर नहीं हमारे पास, कब तक जियेंगे कोई उत्तर नहीं, वही दोनों प्रश्न को अंतर है, तो हम लोग के प्रूव्ड फैक्टर है सारे पागल है, जितने हम जी रहे हैं सब पागल है, पता नहीं किस लिए जी रहे हैं हम, जितने बैठे हैं जितने नहीं भी आए हैं बहादुरगढ़ में, आपका किसी को पूछ लो भैया तू क्यों जी रहा है, अरे कोई पता नहीं क्यों जी रहे, मतलब ये आप देखिए कोई भी दुनिया में वस्तु बना है, ये नहीं छोटे बड़े कोई भी वस्तु का बनावटी हुआ है, मैन्युफैक्चर हुआ है, वो मैन्युफैक्चर होने से पहले उसका ब्लूप्रिंट होगा, माने क्या उपयोगिता होगा उसका, किस लिए ये काम जरूरी, इसलिए उसको से बनाएंगे, बनाने के जैसे बिल्डिंग बनता है, अरे 10 साल पहले से प्रिंट बनता है नक्शा, बाद में भी ईंट सीमेंट आकर के काम में बनता है ना, नहीं पहले से यूटिलिटी उनका क्या उपयोगिता सब होता है फिर बनता है, जब यही सिद्धांत है तो ये जितने प्रोडक्ट हम बैठे हैं, जितने देहधारी बैठे हैं, ये प्रोड्यूस जब किया गया, जब मैन्युफैक्चर किया गया, उसके मैन्युफैक्चर होने से पहले तो उसका उपयोगिता डिसाइड हुआ होगा ना, नहीं व्हाट इज द यूटिलिटी, क्या प्रॉपर यूज है उसका, तो हमको पता ही नहीं क्या यूज है, प्रोड्यूस तो हो गए मैन्युफैक्चर के बैठे हैं और 25-30-50 साल गवा दें, पता ही नहीं क्या यूटिलाइज है उसका, बताओ कितनी दुर्बुद्धि है, अभी तक हम पता ही नहीं हमारा असली यूज क्या है, किस लिए हमारा मैन्युफैक्चर हुआ है आप पता नहीं, तो ये सब पागलपन है, तो इसलिए प्रहलाद महाराज उनके मन में ये प्रश्न डाले, बोले अरे बालकों ये मत समझो ये खेल कूदने के टाइम खराब करेंगे, नहीं अभी तक खेल लेते हैं, खेलने की बड़ा इच्छा है, बाद में जब हो जाएगा मैच्योर तब कर लेंगे भजन कर लेंगे, उसमें क्या बात है ना, कब भजन करने ना, जब बड़े हो जाएंगे मच्छो, बोले कोई गारंटी है तो बड़े होगा, मुझे गारंटी दे सकता कि तू इतने साल तक जिएगा, अध्रुवम कोई गारंटी नहीं, निश्वास है ना ही विश्वास, ये निश्वास पर विश्वास नहीं है कि कब एंड हो जाए, ये तो निश्चित है एक्सपायरी डेट होने वाला है लेकिन कब होगा पता नहीं, तो इसलिए कैसे बोल सकता है कि बड़े होगा, बड़े तो होगा ही कि नहीं क्या पता है, अगर बड़े होंगे भी तभी ऐसे कुछ फंसेगा तो करेगा कैसे, बोले अगर नहीं करेगा तो अगले बार करेंगे, फिर नेक्स्ट जीवन नेक्स्ट लाइफ क्या होगा पता है, अभी तो मनुष्य बना है, नेक्स्ट लाइफ बिल्ली कुत्ता कुछ बन गया तो फिर तो मंदिर जा नहीं सकता, मंदिर जाने पर घुसने भी नहीं देंगे तुझे, आश्रम में रखेंगे नहीं अब तो फिर क्या करेगा, तो इसलिए ये कोई भरोसा नहीं है, यही मनुष्य जीवन एक अति दुर्लभ मौका है जिसमें भजन किया जा सकता है, इसलिए फ्रॉम द बिगिनिंग अभी इस समय से करो, ऐसे उनका शिक्षा दिए और उनको समझाए, बोले खेलकूद क्या करना है पता है आपके जीवन कितना आता है, हम सब सुने हैं कि 100 साल तक जीते हैं इस उम्र में, तो ना 100 साल के सभी का प्राणियों का 100 साल के जीवन की अवधि है, मिनिमम मैक्सिमम 100 साल के जीना है, लेकिन आजकल कितने लोग सेंचुरी मार पाते हैं, आपका हरियाणा वाला उम्र होंगे भी घी मट्ठा खुद पिए होंगे, बड़े मुश्किल से 100 तक जा पाते हैं कि नहीं, है ना, नहीं अरे हाफ सेंचुरी से सब नट आउट लड़कड़ाते, तो 100 साल को जी नहीं पाते, तो उन्होंने प्रहलाद महाराज ने हिसाब बताया, बोले देखो 100 साल की अगर पूरी उम्र होता है, अब बचपन से जो है 10-15 साल तो खेलकूद में गया है ना, नहीं ना, और जो लास्ट 80 से 100 जो वो 20 साल वो तो खटिया पकड़ कर पढ़ना है, कोई कुछ नहीं कर सकते, सम फुली रिजेक्टेड, उसका 20 साल पहले रिजेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ तक कंप्लीट रिजेक्टेड, बाथरूम तक भी नहीं जा सकते, बेड में पड़े रहेंगे, तो 40 साल ऐसे चला गया, वो 60 साल में और निकाल दो, आधा समय तो 100 साल से सो कर बीत जाता है, केवल सोने में जो मुर्दा की तरह कोई काम नहीं करते, 50 साल तो ऐसे गया और 10 ही साल तो बचा। और 10 ही साल में इतने सारे योजना, बाल बच्चा करूंगा, कमाऊंगा, कोठी बाड़ी घोड़ा क्या क्या क्या, और कुछ भी नहीं बन पाएगा, डेट हो गया, खत्म, जा चलो। तो करेगा भजन कब? जिनके लिए तुझे बनाया गया था वो कब करेगा? तो इसलिए ये खेल कूद इस लायक नहीं है हमारे शरीर के लायक। हाँ, मनुष्य जीवन है, उसमें ये सब बदमाशी मस्ती नहीं करना है, ये सब करना। तो बोले कि कुमार, आपकी बात पता कैसे चला? हम तो एक ही उम्र का है भाई, तुम भी 5 साल के, हम भी 5 साल के, एक ही स्कूल में एडमिशन हुआ है। तू थोड़ा एक आध दिन पीछा है, हम एक दिन पहले आए, एडमिशन तो यही महीना में हुआ सबका, एडमिशन ओपन। तुम ऐसी बात कहाँ से पता चला? हमारे सिलेबस में तो है नहीं। तो बोले नहीं नहीं, वो सिलेबस में नहीं है, लाइब्रेरी के कोई बुक्स में नहीं है, हमारे गुरुजी लोग भी नहीं जानते हैं उसको, पर तुझे किसे पता चला? तब प्रहलाद ने बताया कि मुझे पहले नारद जी से कैसे सीखे थे, उस कहानी बताया उनको। कहानी बताने के बाद में बोले, अच्छा नारद जी आपको बताए, तुम गर्भ में था, तुझे किसे याद रह गया? बोले नारद जी की कृपा है, इसलिए होते। और जो इनसे श्रद्धा विश्वास रखते हैं उनको भी पता चल जाता है, वो जान सकते हैं। बोले लेकिन ये काम अब करता, ये अथराइज्ड है, उसको करना उचित है, उसको कैसे जानेंगे? नहीं, झंझट जो संसार बंधन है, संसार में दुख तो है ना। आप लोगों में पूछ रहा हूँ, शायद अब ऐसे बोल देंगे, नहीं तो कोई नहीं मानने के लिए तैयार है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। 24 घंटा में 18 घंटा रोएगा, लेकिन पूछे हाउ आर यू, फाइन। अरे भाई शर्म कहीं के। हम बोलता कैसे फाइन, तूने जो पूछ रहे वो भाई भी फाइन नहीं है, तू भी फाइन नहीं, कोई नहीं। लेकिन अब क्या कर, मानने के लिए तैयार नहीं। तो बोलते हैं लेकिन चाहे मानो ना मानो, चाहे तू राजा महाराजा मंत्री प्रधान कैबिनेट कुछ भी बन जा, बड़े नेता होता, बोले जो 4 इस समस्या है, 4 दुख है इस संसार के, अभी तक उसका कोई समाधान है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। बोले क्या है ना, सबसे पहले जन्म, जन्म के दुख तो अभी याद ही नहीं है, भूल कर, भगवान की बड़ी कृपा है, भूल गए है ना। कितने कष्ट है, हम बोलते हैं हम संसार में आए सुखी होने के लिए। अरे निलज्ज कहीं के, तुझे सुखी होने के लिए तुझे बुला गया, वेलकम कैसे किया गया? जैसे हम आए माला पहनाए, अपने कीर्तन किए, तो इस संसार में हम आए तो हमको रिसेप्शन कैसे किया गया मालूम है ना। 9 महीने तक रिसेप्शन चला, उल्टे टांग, एक मल मूत्र के बोरा के अंदर टांग दिया गया, ये रिसेप्शन है, आओ इसके अंदर। माय गॉड, सांस भी नहीं ले सकते। जिनका रिसेप्शन वेलकमिंग ऐसा किया गया, वो आगे सुख भोगेगा हैं? इतने हम बेशरम है भाई, तेरा ओपनिंग तो दुनिया में रो करके हुआ है, तो आगे हंसेगा कैसे? शुरुआत ही रो रो कर किया और क्लोजिंग भी रुला रुला कर होगा, तो बीच में हंसेगा तू नहीं, बेशरम तो हो ही नहीं सकता। तो बोलते हैं तो सबसे महादुख की शुरुआत होता है जन्म से, इतने कष्टकारक, और जन्म हो गया, अब संसार में आ गया, जो डुप्लीकेट कोई दान दिखाएंगे, हंसाएंगे, जो कुछ कराएंगे, लेकिन धीरे 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 जराग्रस्त होगा, जरा समझते ना। हाँ, चश्मा लग जाएगा, दांत लग जाएगा, ये लग जाएगा, सब बुढ़ापन, बुढ़ापा, व्याधि हो तो है, कमन है तो होता है। ये कि कोई ऐसे व्यक्ति जिसको रोग नहीं है, बताओ। शास्त्र में शरीर को कहा गया, इदम शरीरम व्याधि मंदिरम, क्या कहा गया? ये व्याधि मंदिरम, जैसे मंदिर बन रहा है आपका, मंदिर बोलते हैं क्यों मंदिर? ना ये राधा मदन गोपाल रहेंगे उसमें, ठाकुर जी रहने से मंदिर होंगे ना। मंदिर मतलब नहीं कि जिसका गंबुज होगा 3 और उसमें डिजाइन होगा उसको मंदिर कहेंगे, नहीं। आप अपने घर में भी ठाकुर जी की विराजमान कर दें, क्या हमारा घर तो मंदिर हो गया, हमारा घर कटम। क्योंकि जिस घर में जिस स्थान में ठाकुर जी विराजमान हो तो उन्हीं के नाम से ये घर हो जाएगा, स्थान हो जाएगा, मंदिर हो जाएगा, है ना। नहीं तो मंदिर का अर्थ जहाँ पे मेन ड्यूटी रहते हैं वो मंदिर होता है। तो ये शरीर भी इसमें मेन ड्यूटी रहते हैं, कौन रहते हैं, व्याधि मिस्टर डिजीज। ये शरीर का पूरा हर ठुस ठुस के भरे हैं हर जगह में, इसीलिए इदम शरीरम, ये जो शरीर है ये व्याधि मंदिरम, इस व्याधि इसमें प्रीडोमिनेंट ड्यूटी है, वो बैठे हैं। अब कहीं नहीं नाक से सीख तक हर इंच इंच में हर एक प्रकार के व्याधि है, कितने रिपेयरिंग करेंगे, उसी से बनाए हो तो उसको ठीक नहीं कर सकते। तो एक तो जन्म व्याधि और जरा और अंत में मृत्यु, बोले उसी का समाधान है। कितने राजा महाराजा बड़े बड़े कितने हो गए, कोई सब उसी चार में गए, इसी समस्या का समाधान अभी हुआ नहीं। यही दुख है, इस दुख का समाधान कोई करे तब उसको बुद्धिमान माना जाएगा। तुम खेल कूद करके उसका क्या करे ना, वो तो है ही है ना। तो फिर इसी से सब निकलना चाहते हैं, पूरी दम लगा करके इससे बचना चाहते हैं, मुझे बीमारी ना हो, बुढ़ापा ना आए। लेकिन क्या होगा, वो तो होता ही है, और मरू ना, अरे कोई नहीं। तो सभी चाहते हैं उसे बचने के लिए, बच नहीं पाते हैं। लेकिन बचने के लिए अनेक अनेक प्रकार उपाय करते हैं, करते हैं ना, हाँ सभी लगे हैं उसी। लेकिन बोलते हैं कि संसार बंधन से, ये संसारिक दुख से, भव दुख से बचने के लिए सारे प्रयास करते हैं। और अनेक अनेक पंडित लोग शास्त्र में कई प्रकार उपाय बताए, इसे कर लो हो जाएगा, इसे करो हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगा, मुख्य हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, प्राप्ति बताते हैं। लेकिन जो जो किए हैं ना वही किए ना वो कहे, कोई कुछ हुआ नहीं। बोले इसलिए ये हजारों उपाय बताया गया जरूर, लेकिन इनमें से जो असली मालिक है, जो ये दुनिया बनाने वाला है और हमको भी बनाने वाला है, सारे के जो मैन्युफैक्चरर है, दो दी ओनर जो है, उन्होंने एक उपाय बताया, एक रास्ता छोड़ा है। बोला इस रास्ते में जाओ तो पीछे पहुंच जाएगा, बाकी किसी को रास्ता पता ही नहीं, चूरा रास्ता। तो इसलिए बोलते हैं कि उपाय तो हजारों है, श्लोक में ही बोलते हैं, हजारों हजार रास्ता बताते हैं, लेकिन हुड़बक ने उनको पता है ना, किसी को पता, वही खुद नहीं गए अभी तक। लेकिन एक है जो भगवतो चोदिता, जो साक्षात भगवान जो मालिक, एक रास्ता उन्होंने बताया कि बेटा तू कष्ट भोग रहा है, दुखी हो, निकलना चाहते हो, एक ही रास्ता है, ओनली वन वे, डबल रास्ता है ही नहीं, एक ही रास्ता है। सहस्रो उपाय से, हजारों से एक रास्ता जिसको भगवान ने चुनकर बोले दिस इज इट, यही एक ही है। तो उसी को सर्वश्रेष्ठ, एकमात्र, सबसे उपादेय, सबसे इफेक्टिव मानना चाहिए, उसी को स्वीकार करना चाहिए। बोले ये जो भगवत भक्ति है ये भगवान के अनुमोदित उपाय है। बोले हाँ, अगर इसको कोई करे तब तो वो आ जाएगा। बोले आ भी नहीं पाएगा, मैं ले आऊँगा उसको। अगर वो कोई भगवत भक्ति को स्वीकार करता है तो वो नहीं भी आ पाएगा, मैं उसको खींच कर उठा के ले आऊँगा। भगवान कहते हैं तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मया वेसित चेतसाम। भगवद गीता 12वां अध्याय में कहते हैं भगवान ने, जोर देकर बहते हैं, ऐलान करते हैं, तेसाम अहम, उन लोग के लिए मैं, उन लोग के लिए जिन लोग ने मन लगा करके मेरा भक्ति करते हैं उनके लिए मैं उद्धार करता बनूंगा। तेसाम अहम समुद्धरता, सम्यक रूपेण उनको उद्धार करूंगा मैं। ऐसे नहीं कहते, आजकल किसी के परिचित होंगे बड़े नेता, कोई बड़े कोटिपति, कोई बड़े डोनर होंगे, बोलेंगे मेरा उनका साथ परिचित है, फ़ोन करूंगा, हमारा काम कर देंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वही फ़ोन करेंगे, किसी को बोल देंगे थोड़ा देखना ये हमारे आदमी है ना, नहीं वो करेगा नहीं करेगा कोई गारंटी नहीं, उनका पोजिशन कब तक रहेगा, वो क्या करेंगे भरोसा। लेकिन यहाँ श्री भगवान स्वयं गारंटी देकर कहते हैं जो भक्ति करेंगे मन लगा करके, तेसाम अहम, मैं स्वयं किसी को फोन करके बोलूंगा नहीं, किसी को बताऊंगा नहीं, रेफरेंस नहीं दूंगा, मैं स्वयं जाऊंगा करेंगे क्या, मैं जाकर उनको उद्धार करूंगा। तेसाम हम समुद्धरता, मैं जाकर के पर्सनली उनको उठाऊंगा। आप इतनी बड़ी, हाँ यस आई विल गो, मैं जाऊंगा। और जाते बोले आप लोग क्या है, एक हाथी के लिए मैं चलाया, हाथी गजेंद्र उदाहरण लीला में सारे देवताओं ब्रह्मा रुद्र आदि समुच्चय देवता और बड़े बड़े लोग सब खड़े थे, देख रहे थे, इनको बुला रहे बड़े आदमी, प्लीज हेल्प करो मर रहा हूँ। सारे बोले नहीं, हमारा पक्का हमारा रिंग डायल नहीं किया नंबर, थोड़ा रंग नंबर है। वहां कर खड़े थे सब, लेकिन हेल्प नहीं कर रहे थे। जब बुला बुला कर देखा सब खड़े को मदद नहीं कर रहे हैं, और उनको तो ठीक से पता नहीं था, पिछले जन्म में कुछ श्लोक याद किया था, भक्ति किया था। अब मरते समय में याद आया, एक बार जो पानी में डूब जा रहा था, अब मरूं तब मरूं, इसी अवस्था में देखा एक कमल के फूल तालाब में, अब सुंड से मैं डूब, सर तो डूबने वाला ही था, आंख आंख से डूब गया था, कान उठा करके सुंड में एक कमल फूल को उठाया, उठाकर बोलका नारायण इति अखिल गुरु भगवान नमस्ते, इतना तक कह पाया, बस पूरा नहीं कह पाया, बोलते नारायण चार अक्षर पूरा भी प्रोनाउंस नहीं कर पाए, हे अखिल गुरु हे नारायण बोलने के लिए तो पानी में घुस गया था, मुंह में पानी, बोल ही नहीं पा रहा था। आधे नाम से भगवान वैकुंठ से डायरेक्ट फ्लाइट लिए, गरुड़ जी से बैठे आए, रास्ता में बोले तो डिले हो रहा है, लेट हो जाएगा, गरुड़ जी को रिजेक्ट किए। गरुड़ जी चलते थे मन की गति से, बोले तू मंद गति में जा रहे हो, मर जाएगा तो जाकर फायदा क्या मेरा पूरा नाम अगर ले लेगा बदनाम हो जाऊंगा मैंने, बोले क्यों, बोले मेरा पूरा नाम ले लिया मैं बचा नहीं पाया, बोला बहुत बड़े बदनाम होगा मेरा, नहीं वो नाम लेना कंप्लीट होने से पहले मैं घटनास्थल में पहुंचना होगा, और तू लेट कर रहा है। गरुड़ जी को साइड करके भगवान ने अपने गति से दौड़े, चप्पल छूट गया, अपने दुपट्टा छूट गया, ऐसे तेजी से भागे, उनका अज्ञान चार अक्षर कंप्लीट नहीं हो पाता, आकर पहुंच गए आधे नाम, पहुंच करके समुचे देवता सब देख रहे थे, खड़े थे, क्या होगा, कह रहे आए हे भगवान, आ रहे भगवान, आए सीधा बाएं हाथ में ए मध्यमा और अंगूठा, दो अंगूठी में वो हाथी, और उसके पीछे विशाल हाथी था पर्वत जैसा, उसके भी बड़ा पर्वत जैसा मगरमास, दोनों को उठा लिए ऊपर, छट 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 कर दोनों को जिंदे उठाए, ऐसे उठाए देखे ऊपर रख करके, सीधा पहले मगरमाछ को उद्धार किए, मगरमाछ को आपने चक्र राइट हैंड में काट दिए उसका गला, जैसे गला काटे हाथी भी देख रहा है, सारे देवता देख रहे हैं, सब देख रहे, सबके सामने तत्क्षणात वो मगरमाछ बिल्कुल सुंदर दिव्य रूप धारण किया। हाथी तो हाथी है, हाथी प्रार्थना किया था भैया, तकलीफ उनको हुआ था, वो इतने दिन से प्रार्थना किया, फूल चढ़ाया, लेकिन अभी तक वो हाथी रहा, जो उनको काट मार रहा था उनका उद्धार सबसे पहले, और दिव्य रूप धारण करके आया, भगवान के चरण में मथा टेका, परिक्रमा किया, बोला थैंक यू भगवान मैं जा रहा हूँ, देवता बनकर जा रहा था, हाथी हाथी वो देख रहा है ये क्या हुआ, मुझे खा रहा था वो, हजारों साल से मेरे से लड़ लड़ के मार रहा था, मैं प्रार्थना किया, वो तो मेरा रक्त चूस रहा था, प्रार्थना मैं कर रहा हूँ और भगवान आए, वो उसी को दिव्य रूप प्रदान करे, प्रणाम कर परिक्रमा करके जा रहा है। सारे देवता हाथी तक भगवान को पूछा, बोले प्रभु ये क्या गड़बड़ी है, व्रत मैंने किया, फास्टिंग मैंने किया, फूल मैंने चढ़ाया, प्रार्थना मैंने किया, मैं मर रहा था, वो मुझे मार रहा था, ओ आप आए दौड़ करके मेरे लिए, आ करके उनको उद्धार। भगवान बोले बात अब समझा नहीं ना क्या, बोले मैं तो ये नहीं देखता हूँ पानी के अंदर था कौन किसको मार रहा था, लेकिन तू मुझे बुलाया ये तो निश्चित, तू मेरा भक्त हो गया, मैं भक्त हुआ नहीं, भक्त प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आधा बाकी है नाम, अभी आधा नाम लिया हूँ, बोले तू, मैं तो मान लिया कि तू आधा भक्त हो ही गया ना तो मुझे उद्धार, बोले क्या करूँ तू आधा भक्त हो गया ना, और वो बदमाश हो जैसे आपके चरण पकड़ा था, आपके पैर पकड़ा इसलिए उसका नंबर पहले है। भगवान कहना चाहते हैं जो भक्तों के चरण पकड़ता है उनका टिकट कन्फर्म, और भक्तों का वोटिंग लिस्ट में रहेगा, हाँ बोले आपका तो वोटिंग लिस्ट में है, अभी बाद में देखेंगे कन्फर्म, उनका पहले से कन्फर्म, क्योंकि आपके चरण पकड़ा, भले तुझे मारने के लिए करे कुछ भी करे लेकिन पैर तेरा पकड़ा था। तो इसी को भगवान कहते हैं सिद्धांत, जद पाश्रय आश्रया, जो भगवान को आश्रय करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का कोई चरण आश्रय करता है तो उनका नंबर तो कन्फर्म पहले आएगा, सबसे पहले आएगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो बड़े बड़े भक्त भगवत पार्षद है, भगवान के निजजन उनके नज़दीक है, आप भूल में उनके पास मत जाइए। जो उनको पकड़े हैं उनके पास भी नहीं, जो उनको पकड़े हैं उनको और जितने नीचे जाएंगे इतने ज़्यादा पावर बढ़ेगा। ये तो साधारण संसार में भी नियम है। आपके बेटा होगा कोई गड़बड़ के आप डांट देंगे, लेकिन आपके पोता होगा डांटेंगे, क्या कर रहा है तू भी ऐसा कर रहा था, क्यों डांट रहे है? आओ बेटा आप देखो। और पोता के पोता प्रपोता होगा तो और तो सुगंध में लेकर घूमेंगे। इतने लाड़ प्यार करेंगे, जितने रिलेशन डाउन जाएगा इतने प्रेम बढ़ता है, गलती नहीं दिखते हैं, भूल नहीं दिखते हैं। तो इसे भगवान की यही स्थिति है। तो जो किया उनको ना करके सीधा रहो के बोले तेरे नंबर बाद में आएगा, पहले उनको उधार के वो चरण पकड़ा था तेरा। तो इस प्रकार से बोलते हैं जो हाथी था वो हाथी ही था, कौन से पढ़ा लिखा था, गज गज मूर्ख था, गज था वो तो, हाँ ऐसे मस्ती कर रहा था, बदमाशी लड़ाई कर रहा था, लेकिन उन्होंने याद किया क्योंकि पिछले जन्म में वो मंदिर आता था, कुछ श्लोक फ्लोक थोड़ा पाठ कर रहा था, थोड़ा याद था उसका। इस जन्म में याद आया, मरते समय पूरा नहीं याद, मरते समय थोड़ा बहुत याद आया, इतने ही कह पाया, इतने में काम बन गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसी जन्म में जो भी है टाइम निकाल कर मंदिर में आओ, थोड़ा बहुत प्रार्थना करो, थोड़ा बहुत स्तुति पाठ करो, आरती में भाग लो, क्या पता अगले जन्म हमारा क्या होगा। अगर कुछ भी है, कुत्ता बिल्ली हाथी कुछ भी बन जाए, अगर इसी जन्म में थोड़ा बहुत किए ना पुरुषोत्तम मास में आकर अगर भक्ति भक्ति किए तो वो भूलेगा नहीं, क्योंकि भक्ति अविनाशी है, भक्ति का नाश कभी होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। भले 10 जन्म तक नहीं किया और 11वां जन्म में याद आया तो वहीं से जहाँ से किए थे वहीं प्लस होगा, वो नष्ट नहीं हो सकता। बाकी संसार के जितने अचीवमेंट, आप 25 साल लगा करके MSc PhD किया मेडिकल साइंस में, अब मर गया, अब चाहे दूसरे को प्राणी न मनुष्य भी हो गया लेकिन फिर ABCD पढ़ना पड़ेगा, गया सारे गया, कुछ नहीं काम करे। अरे भैया अभी 2 महीना पहले तो मैंने किया था कंप्लीट, हाँ अभी फिर ABCD पढ़ो, फिर एंट्रेंस। भौतिक अचीवमेंट का, भौतिक सिद्धियों का कोई गारंटी नहीं कि टिकेगा, ये क्षणस्था ये। और धन संपत्ति तो अभी लेकर आया, घर पे पहुंचना है, चोरी हो गया, गया मर मर कर रहे हो, क्या लाया था, तोड़ताड़ के ले गया सर, तेरे होते होते जिंदगी में तेरे होते होते सब लूटपाट के ले ली, खत्म, रोएगा बैठ कर, किसी का गारंटी नहीं। लेकिन एक ऐसे धन है वो भगवत भक्ति, किसी ने उसको लूट नहीं सकता, कभी उसका नाश हो ही नहीं सकता, ऐसे अद्भुत धन है। ये धन को अगर जितना बांटोगे इतना बढ़ेगा, हाँ इसीलिए तो मीरा जी कहे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ऐसे रत्न मुझे मिला, ऐसे रत्न धन मिला, ये हरे कृष्ण महामंत्र राम नाम मिला मुझे, ये इसने धन की उसको रखने के लिए कोई तेजोरी कोई बैंक बैलेंस कोई अकाउंट खोलना नहीं पड़ता भाई ना, वो ऐसे धन है कोई जंक लगेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, ना जलेगा ना मिटेगा, कुछ भी नहीं हो सकता, अजर अमर है। और कोई चोरी उसको कर ही नहीं सकता, चोर करेगा तो चोरी उधार हो जाएगा, अगर कोई चोर उसको चोरी करने आया पहले उसका उधार हो जाए अगर उसको मैं दूंगा भी मेरा ही और डबल बढ़ेगा, क्या अद्भुत धन है। ऐसे धन को छोड़ करके हमें 3rd क्लास नोट के पीछे पड़े हैं, जो गवर्नमेंट चेंज हुआ बदल गया, गया सारे मरो पड़ेंगे भाई, सारे लाल नोट हरी नोट सब गया, हाँ ओके भरोसा थोड़ी है। तो असली धन तो ये है, तो इसी को प्रहलाद महाराज कहते हैं, क्योंकि जो भगवान ने स्वयं रिकमेंड किए हैं, भगवत चोदितः, भगवान ने जिसको कहे कि भगवान दुनिया बनाने वाला मालिक है, ओ बल्ला भैया इस दुख से कष्ट से संसार से समस्या से निकलना चाहता हूँ, दिस इज द ओनली वे, वही भक्ति ही एकमात्र पंथा है, एकमात्र रास्ता है, उसी को कोई पकड़े तो 100% गारंटी इसी जिंदगी में सुखी हो जाएगा, परलोक में तो सुखी है ही है रिजर्व। तो इसी के लिए जो इस बात को जानते हैं महाकारुणिक परम कृपालु दयालु आचार्यगण, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो लोग बाकी कुछ काम ना करके इस सारे संसार में भगवत भक्ति उदय करने के लिए वो चिंतित व्यवस्था करते हैं। इसी के लिए तो आपके बहादुरगढ़ मंदिर बना जाता है, कि यहाँ के जितने लोकाल में जितने लोग हैं कैसे भी भूले भटके किसी प्रकार से आ जाए, आज हमारे बार्थ डे है चलो थोड़ा मंदिर हो आते हैं, आज हमारे शादी के सालगिरह है चलो आ जाते, ऐसे भी किसी भी प्रकार से आ जाए, जैन तैन प्रकार आ जाए तो भगवान को दर्शन कर लेंगे। सुनना नहीं चाहते होंगे, मोबाइल फोन में फिल्म गाना लगा कर आते हैं, लेकिन यहाँ तो भक्त लोग हरे कृष्णा करते हैं, टेप भी चलता है तो कान में न चाहता हुए घुस जाएगा, न चाहते हुए कान में न हरिनाम चला जाएगा। आप जब घूम कर आते रहेंगे वो किताब ले लीजिए, अगर नहीं लूँगा तो चरणामृत ले लीजिए, थोड़ा प्रसाद भी ले लीजिए, जाएंगे कहाँ, मंदिर आए तो फंसो गई, आपका उद्धार तो होने वाला ही है ये समझ लो, अगर फंस गया तो उधर गया, नहीं फंसो तो लाइन में लग गया, चरणामृत पाया, प्रसाद खाया, थोड़ा देख कर गया, सुन कर गया, कभी ना कभी मर्त दम में याद आएगा, मर्त दम याद आएगा, अरे यार वही बचा देगा, वही बचा देगा। भगवान कहते हैं इस भक्ति के लिए, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस भागवत धर्म का स्वल्पम अपि थोड़ा सा भी आप आचरण करो, महान भय से उबार देगा, आपको बचा देगा, महान भय से बचा देगा। लेकिन हम थोड़ा बहुत करे तो सही, ज्यादा करे तो कहना ही क्या है, तो कम से कम इतना तो करे। तो ही भगवान स्वयं कहें इसी भक्ति के बारे में, आज प्रह्लाद महाराज जो प्रकृष्ट भगवत भक्त हैं, राज भक्त हैं, उन्होंने अपने मित्रों को समझाते हैं, अरे मित्रों ये खेल कूद में ये बेकार में टाइम वेस्ट मत करो, जो भी जितने सीमित समय है हमारा मरने से पहले केवल इसी के लिए प्रचेष्टा करो, भगवत भजन कर लो मरते पहले, तो ही आपको जीवन के उद्धार कर देगा, आपके जीवन के लक्ष्य सफलता प्राप्त करा देगा। क्यों? क्योंकि ये उपाय भगवान स्वयं उसको कहे हैं, भगवान के द्वारा रिकमेंड। बाकी हजारों इधर उधर की बात इसी फिजल बात मत पढ़ो, टाइम मत खराब मत करो, सीधा मंदिर में आओ, आप नौकरी करो, चाकरी करो, आप व्यापार करो, दुकान करो, कुछ भी करो, टाइम एक दो घंटा सुबह शाम निकाल कर मंदिर में आओ, मथा टेको, थोड़ा भक्ति भजन करो, कथा सुनो, खा पी कर जाओ, तभी देखना इसी जीवन में ही लोग आपको ऐसे बोलेंगे आप तो महापुरुष हो गए, हम तो ऐसे रह गए, आप तो महापुरुष ऐसे ही, और परलोक में तो क्या कहें। तो साक्षात अगर कोई इस जीवन को सुधारे और यह लोक परलोक दोनों सुधारना चाहते हैं तो ही एक सेंटर प्लेस है। तो अभी अभी ये विशेष पुरुषोत्तम मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास में 3 साल के बाद 1 महीना आता है, भगवान पुरुषोत्तम ने एक अपॉर्चुनिटी देते हैं 3 साल के बाद, हर 3 साल के बाद में, कि कम से कम इस दलदल से इस दुख से निकलने के लिए थोड़ा टाइम तो दो, नहीं तो सारे साल पाप पुण्य शुभ अशुभ चक्कर में फंसे रहते हैं, इसमें कई ऊपर नीचे हो नहीं सकते, सब जाल में फंसे रहते हैं, वो जाल से निकालने के लिए 1 महीना देते हैं। इस महीना का इतने प्रभाव है, इतने महिमा है इस प्रभाव इस महीना में, अगर इस महीना में कोई दान दक्षिणा भक्ति स्तुति आदि कोई करे तो कई गुना फल मिलेगा, कई गुना फल मिलेगा, उसी के समान कोई कार्तिक मार्ग सिर वैसा कोई नहीं हो सकते। तो इसी महीना में अगर आप मंदिर में आए और शुभ संकल्प लें कर जीवन में मैं जो कुछ करूँगा, प्रभु आप आएंगे, आप आने से पहले मैं भी कुछ करूँगा आपके लिए, कम से कम मैं तो मर जाऊँगा, कोई नहीं रहेंगे लेकिन मेरा कहेंगे तो उन्होंने ऐसा किया था, आप तो याद करेंगे बाकी कोई याद करे ना करे, ये भगवान जिसको याद करेंगे तो फिर कहना ही क्या। तो ऐसे यादगारी का ऐसे हमारा सामने एक बहुत बड़े सुवर्ण सुजोग सभी को ऐसे नहीं मिलता, क्योंकि सभी जगह मंदिर बनता तो है नहीं, अब जितने आसपास में जितने इलाका है कहाँ है मंदिर बनता, तो ये सुजोग किसी को मिलेगा नहीं, ये आप लोगों का सुवर्ण सुजोग है कि हम कुछ कर ले, जब तक हमारा शक्ति सामर्थ्य है साधन है कुछ ठाकुर जी के लिए कर ले, यादगार रह जाएगा, हम ठाकुर जी के लिए जो किए थे और ठाकुर जी के लिए जो किए थे वो कभी अविनाशी होता, मिटता नहीं है, कभी नहीं मिटता। आप अभी सुने आधा नाम उच्चारण कर दिया जब इतने बड़े प्राप्त फल मिला उसको, और आप कुछ करेंगे तो कैसे कैसे बोले जा सकते। तो इसके लिए अभी मैंने सुना कि अभी लगभग कंप्लीशन में हो गया है, अभी 1-2 महीना में शायद ठाकुर जी पधार जाएंगे और मंदिर का देखेंगे विशेष कैसे मंदिर चमक जाएगा। तो इसलिए जो इसी समय में मदद करता है, एक क्रुशियल समय है, तो उसी को याद करते हैं ना। और जब हमारे संपन्न है बहुत रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा आप जाएंगे बोले मैं आपको ये खिलाता हूँ, तो बहुत खिलाने वाले आते हैं तो क्या खिला। अब तो है बहुत सारे दोस्ती अभी तक नहीं, जब मैं दर दर भटकता हूँ कुछ है ही नहीं परिस, अभी कोई मदद करता है वो याद किया, हाँ ये मित्र है उसी समय मुझे मदद किया। तो इसी समय में कोई मदद करे, भक्तों को मदद करे तो और ज़्यादा फायदा है। भगवान को मदद कर मंदिर बनाने में तो है ही है, यहाँ से मंदिर बनेगा आपने मंदिर बनाने में मदद करेंगे तो भगवान आपके धाम में आपके लिए घर बनाएंगे। बोले वहाँ ईंट दे एक ईंट रखा मैं 100 ईंट डालूंगा, 100 गुना ज़्यादा। हाँ आप एक बीम डालें बोले 100 बीम डालूंगा, इतने बड़े बिल्डिंग करूंगा उनके लिए, वो ये किया। वो तो भगवान के लिए करने से करेंगे, वो भगवान के भक्तों लिए करे तो अरे कहना ही क्या। अभी सुने, इसलिए भक्तों की सेवा भगवान की सेवा से और ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा बढ़ करके। हाँ तो इसलिए मैं ये कहना चाहता, मंदिर तो बनता है, भगवान को क्या कमी है, वो तो वैकुंठपति है, आत्माराम परम ब्रह्म है, उनके लिए कुछ कमी नहीं है, कमी बेचारे भक्तों का है। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं अगर कोई मुझे सेवा करना चाहता है, मेरा सेवक बनना चाहता है तो मेरा सेवा करने से, तो सेवा करने को मेरे सेवा की कोई जरूरत नहीं, तेरे जैसे डिस्क्वालीफाइड का फिर कैसे बनूँ आपके सेवक ना, मेरे जो भक्त हैं उनके सेवक बन जाओ तब मैं मान लूँगा। हाँ नहीं तो भगवान के लिए कोई आवश्यकता नहीं, उनके लिए तो भाग्य की देवी लक्ष्मी खड़ी है सेवा करने के लिए, हमारा नंबर कभी आने वाला नहीं है। तो अगर हमारा जीवन सफल करना चाहते हैं तो भक्तों की सेवा में जुट जाइए, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और हमारा काम भी बन जाएगा, हमारे जीवन सफल हो जाएगा। इस प्रकार से आपके इस इलाका में एक बहुत बड़ी सुवर्ण सुयोग सभी के लिए अपने जीवन सफल करने के लिए प्राप्त होता है। और मंदिर बन जाएगा तो आगे पीढ़ी तक कितने लोग उद्धार होंगे, कितने लोग सुधर जाएंगे, है ना नहीं, तो एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन हो जाएगा। आजकल स्कूल कॉलेज के लिए हजारों लाखों करोड़ रुपया डोनेशन मिलता है, खर्चा कर बनाते हैं, और स्कूल कॉलेज सारे भूत प्रेत प्रोड्यूस होते हैं, है ना नहीं, आप लोग जानते होंगे कितने, क्या बताएं। आजकल स्कूल कॉलेज का जो हाल है, ना टीचर पढ़ाते हैं ना लड़के पढ़ते हैं, और ऐसे बन करके निकलते हैं, अरे बाप रे बाप, भूत प्रेत से उनसे बेटर है ऐसे निकलते। तो इसलिए कोई नहीं इस प्रकार के भूले भटके युवकों को बचाने के लिए, एक ही है मंदिर के परिसर, यहाँ आए ये शुद्ध सतगुणी वातावरण में प्रसाद खाए, सुने, देखे व्यवहार, वही उनके चरित्र को सुधारेगा, उनके मन को सुधारेगा, वही उनको परिवर्तन करेगा। वो प्रकट प्रमाण हमारे ये संस्था है। प्रभुपाद जी ने संस्था को शुरू किए विदेश में जा करके, हिप्पी लोग थे, सारे नंगे चरस खा करके घूमते थे, उन्हीं लोग को जाकर हरे कृष्ण कराए, अब सब एक से एक गोस्वामी जैसे बन गए, देवता जैसे बन गए, इसी जीवन में इतने प्रभावशाली है, सो इफेक्टिव है ना नहीं। तो और किसी को बोलना पूछना है, साक्षात प्रमाण हमारे सामने विद्यमान है। हम जैसे कई ऐसे नौजवान लड़के देखो, अरे भैया बाल कितना प्यारे हैं, कुछ नहीं, 2-4 साल हरे कृष्ण के बाल उड़ गए, कपड़ा उतर गया, क्या कम बात है, जीन पेंट छोड़ना, हेयर स्टाइल छोड़ना, क्या कम बात है, छूट जाते, सोने के चेन पहन रहे थे, लकड़ी का नमाला पहन कर घूमे, सकड़ो प्रमाण मौजूद है। इतने पावरफुल ये प्रोसेस है, सबको सुधार उधार कर देगा। तो इसलिए इसको अपनाइए, इस मनुष्य जीवन को सफल कीजिए और दूसरे को भी सुजोग दे करके बता करके उनका भी कराइए। हरे कृष्ण।